नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी पैटर्न्स, आर्किटेक्चर एज स्ट्रेटजी। एबेन ह्यूट की प्रौद्योगिकी नेतृत्व और एंटरप्राइज आर्किटेक्चर पर केंद्रित व्यावहारिक पुस्तक है। इसका उद्देश्य तकनीकी विशेषज्ञों को ऐसी रणनीति बनाना सिखाना है जो केवल प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों या टूलों की सूची न हो, बल्कि व्यवसाय की दिशा, निवेश, जोखिम और क्रियान्वयन से स्पष्ट रूप से जुड़ी हो। ह्यूट अपने मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, मुख्य सूचना अधिकारी और मुख्य आर्किटेक्ट के अनुभवों से विकसित 39 पैटर्न प्रस्तुत करते हैं। ये पैटर्न दोहराए जा सकने वाले विचार और कार्य ढांचे हैं, जिनसे नेता संदर्भ का विश्लेषण, विकल्पों की तुलना, प्राथमिकताओं का निर्णय, लागत का अनुमान और रणनीति का संप्रेषण कर सकते हैं। पुस्तक का केंद्रीय आग्रह है कि आर्किटेक्चर को केवल तकनीकी डिजाइन नहीं समझना चाहिए, वह संगठन की क्षमता, प्रतिस्पर्धी स्थिति और परिवर्तन की गति को प्रभावित करने वाला रणनीतिक साधन है। इसलिए यह पुस्तक रणनीति निर्माण के साथ संस्कृति, निर्णय प्रक्रिया और हितधारकों के बीच संवाद को भी समान महत्व देती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, आर्किटेक्चर को व्यवसाय की दिशा से जोड़ने का रणनीतिक दृष्टिकोण। पुस्तक का आधारभूत विचार यह है कि प्रौद्योगिकी आर्किटेक्चर का मूल्य उसके तकनीकी परिष्कार से नहीं, बल्कि व्यवसाय पर उसके प्रभाव से तय होता है। किसी संगठन के लिए क्लाउड, डेटा प्लेटफॉर्म, माइक्रोसर्विसेज या सुरक्षा निवेश अपने आप में रणनीति नहीं है। वे तभी रणनीतिक बनते हैं जब यह स्पष्ट हो कि उनसे ग्राहक अनुभव, बाजार में प्रवेश की गति, परिचालन लागत, नियामकीय अनुपालन, विश्वसनीयता या नए उत्पादों की क्षमता कैसे बदलेगी। ह्यूट आर्किटेक्ट की भूमिका को समाधान डिजाइन तक सीमित रखने के विरुद्ध तर्क देते हैं। आर्किटेक्ट को व्यावसायिक उद्देश्य, उद्योग की स्थितियां, संगठन की सीमाएं और विभागीय वास्तविकताओं को एक साथ समझना पड़ता है। इसीलिए पुस्तक बाहरी संदर्भ, जैसे व्यापक तकनीकी और बाजार प्रवृत्तियां, तथा आंतरिक संदर्भ, जैसे संगठन की संरचना, कौशल और प्राथमिकताओं, दोनों पर ध्यान देती है। यह दृष्टि तकनीकी टीमों को फीचर या प्लेटफॉर्म के पक्ष में अलग थलग तर्क देने से बचाती है। इसके बदले वे निवेश का कारण, अपेक्षित परिणाम, स्वीकार्य जोखिम और विकल्प न चुनने की कीमत स्पष्ट कर पाते हैं। पुस्तक यह भी रेखांकित करती है कि रणनीति, संस्कृति और क्रियान्वयन परस्पर निर्भर है। श्रेष्ठ योजना भी विफल हो सकती है यदि निर्णयाधिकार, टीम व्यवहार और डिलीवरी क्षमता उसके अनुकूल न हो। इसलिए आर्किटेक्चर को स्थिर ब्लूप्रिंट नहीं, बदलती व्यावसायिक परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता के रूप में देखना अधिक उपयोगी है। दूसरा, 39 पैटर्नों के माध्यम से रणनीति को दोहराने योग्य बनाना। ह्यूट का विशिष्ट योगदान रणनीति को अमूर्त सिद्धांतों के बजाय पैटर्नों की भाषा में प्रस्तुत करना है। पैटर्न किसी एक कंपनी के लिए तैयार उत्तर नहीं होता, वह बार बार आने वाली समस्या, उसके संदर्भ और उपयोगी समाधान रूप की पहचान कराता है। इस रूप में पुस्तक पाठक को हर परिस्थिति में शून्य से रणनीति लिखने के बजाय उपयुक्त उपकरण चुनने की सुविधा देती है। उदाहरण के लिए, वन स्लाइडर किसी प्रस्ताव का संक्षिप्त सार बनाकर निर्णयकर्ताओं का ध्यान मुख्य चुनावों पर केंद्रित कर सकता है। यूज केस मैप आवश्यकताओं को केवल तकनीकी घटकों की सूची के बजाय उपयोग और परिणामों से जोड़ता है। प्रायोरिटी मैप सीमित संसाधनों में विशेषताओं या पहलों के बीच स्पष्ट चयन कराने में सहायक है। टेक्नोलॉजी रडार उभरती तकनीकों को अपनाने, आजमाने, देखने या टालने जैसे निर्णयों के लिए साझा दृश्य प्रदान कर सकता है। इन पैटर्नों की उपयोगिता इस बात में है कि वे बातचीत की संरचना बदलते हैं। टीम यह पूछने लगती है कि कौन सी समस्या हल हो रही है, किस प्रमाण के आधार पर विकल्प चुना गया है और किस स्तर की अनिश्चितता स्वीकार्य है। फिर भी पैटर्नों को कठोर चेकलिस्ट मानना गलत होगा। अलग आकार, संस्कृति और नियमन वाले संगठनों में उनकी गहराई और क्रम बदलना पड़ेगा। पुस्तक का व्यावहारिक संदेश यह है कि पैटर्न निर्णय की गुणवत्ता बढ़ाने वाले ढांचे हैं, निर्णय के स्थानापन्न नहीं। तीसरा, लागत अनुमान और बिल्ड बाय पार्टनर निर्णयों में अनिश्चितता का प्रबंधन। प्रौद्योगिकी रणनीति अक्सर बड़े निवेश की मांग करती है, इसलिए पुस्तक वित्तीय और कार्यान्वयन संबंधी अनिश्चितता को सीधे संबोधित करती है। ह्यूट का दृष्टिकोण यह याद दिलाता है कि रणनीति प्रस्तुत करना वस्तुतः दूसरे लोगों के धन, समय और संगठनात्मक ध्यान के उपयोग का प्रस्ताव है। इस कारण केवल आकर्षक तकनीकी संभावना पर्याप्त नहीं है। प्रस्ताव में लागत की दिशा, अपेक्षित लाभ, प्रमुख निर्भरताएं और जोखिम समझने योग्य रूप में होने चाहिए। डायरेक्शनल कॉस्टिंग जैसे पैटर्न आरंभिक चरण में सटीकता का भ्रम पैदा किए बिना परिमाण और तुलना का आधार देते हैं। रफ, रिफाइंड, रियलिस्टिक एस्टिमेट्स का विचार अनुमान को एक स्थिर संख्या नहीं, सीखने के साथ विकसित होने वाली प्रक्रिया मानता है। शुरुआती अनुमान सीमित जानकारी पर आधारित होंगे, जबकि डिजाइन, आपूर्तिकर्ता, दायरा और कार्यान्वयन योजना स्पष्ट होने पर उन्हें सुधारा जाना चाहिए। बिल्ड बाय पार्टनर विश्लेषण भी इसी अनुशासन का भाग है। प्रश्न केवल यह नहीं कि कुछ बनाया जा सकता है या बाजार में खरीदा जा सकता है, विचार यह होना चाहिए कि कौन सा विकल्प विशिष्ट क्षमता बनाएगा, नियंत्रण देगा, समय बचाएगा, दीर्घकालिक लागत घटाएगा या निर्भरता बढ़ाएगा। ड्यू डिलिजेंस इस निर्णय में विक्रेता, एकीकरण, सुरक्षा, संचालन और अनुबंध के जोखिमों की जांच जोड़ता है। इस प्रकार पुस्तक वित्तीय चर्चा को तकनीकी टीम की कमजोरी नहीं, जिम्मेदार रणनीति का अनिवार्य पक्ष मानती है। चौथा, संदर्भ विश्लेषण से प्राथमिकता और तकनीकी चुनावों की गुणवत्ता बढ़ाना। पुस्तक रणनीति को तकनीक के भीतर शुरू होने वाली प्रक्रिया नहीं मानती, वह पहले उस संदर्भ को देखने पर जोर देती है जिसमें संगठन काम कर रहा है। इसके लिए स्वॉट, पोर्टर्स फाइव फोर्सेस और एंस ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स जैसे परिचित रणनीतिक उपकरणों का उपयोग तकनीकी निर्णयों से जोड़कर किया जाता है। इनका उद्देश्य प्रबंधन सिद्धांत दोहराना नहीं, बल्कि यह जांचना है कि बाजार की प्रतिस्पर्धा, ग्राहक की अपेक्षाएं, नए प्रवेशकों का दबाव, आपूर्तिकर्ता निर्भरता या विकास की महत्वाकांक्षा तकनीकी रोडमैप को कैसे प्रभावित करती है। उदाहरणतः यदि संगठन नए बाजारों या उत्पादों में विस्तार चाहता है तो आर्किटेक्चर में पुनउपयोग, एकीकरण और तेज प्रयोग की क्षमता को अलग प्राथमिकता मिल सकती है। यदि नियमन या सुरक्षा जोखिम केंद्रीय है तो गति के साथ नियंत्रण, ऑडिट और विश्वसनीयता भी रणनीतिक आवश्यकताएं बन जाते हैं। पुस्तक उद्योग निगम और विभाग के स्तरों को अलग अलग देखने का संकेत देती है, क्योंकि किसी अच्छी कंपनी स्तरीय दिशा को विभागीय कौशल, बजट, विरासत प्रणालियों और संचालन मॉडल से टकराना पड़ सकता है। इस विश्लेषण की वास्तविक उपयोगिता प्राथमिकता में है। हर अच्छी दिखने वाली तकनीक तुरंत अपनाने योग्य नहीं होती। संदर्भ यह तय करने में मदद करता है कि किन पहलों को अभी निवेश चाहिए, किन्हें प्रयोग के स्तर पर रखना चाहिए और किन्हें स्पष्ट रूप से नहीं करना चाहिए। परिणामस्वरूप तकनीकी रोडमैप फैशन या व्यक्तिगत पसंद से कम प्रमाणित व्यावसायिक चुनावों से अधिक संचारित होता है। अंत में कार्यकारी स्वीकृति के लिए रणनीति का स्पष्ट और विश्वसनीय संप्रेषण। ह्यूइट के अनुसार एक उत्कृष्ट रणनीति भी प्रभावहीन रह सकती है यदि उसे अलग अलग श्रोताओं के लिए समझने योग्य ढंग से व्यक्त न किया जाए। यही कारण है कि पुस्तक संप्रेषण को अंत में जोड़ा गया प्रस्तुति कौशल नहीं, रणनीति का मूल घटक मानती है। तकनीकी नेताओं को कार्यकारी अधिकारियों, वित्त टीमों, उत्पाद प्रबंधकों, इंजीनियरों और बाहरी भागीदारों से एक ही भाषा में बात नहीं करनी चाहिए। कार्यकारी समूह आमतौर पर परिणाम, निवेश, जोखिम, विकल्प और निर्णय मांगता है। इंजीनियरिंग समूह को वास्तु संबंधी सीमाएं, क्रम, निर्भरताएं और क्रियान्वयन की स्पष्टता चाहिए। पैटर्न और टेम्पलेट साझा भाषा बनाते हैं जिससे जटिल विचार को बिना अनावश्यक तकनीकी विवरण के संरचित किया जा सके। वन स्लाइडर जैसे संक्षिप्त प्रारूप का महत्व इसी में है कि वह चर्चा को मुख्य निर्णय पर लगता है, जबकि अधिक विस्तृत आर्किटेक्चर डेफिनेशन और एग्जीक्यूटेबल आर्किटेक्चर योजना को क्रियान्वयन से जोड़ते हैं। संप्रेषण का अर्थ केवल सहमति प्राप्त करना भी नहीं है। एक उपयोगी रणनीति यह स्पष्ट करती है कि क्या नहीं किया जाएगा, किन मान्यताओं पर योजना टिकी है, सफलता कैसे मापी जाएगी और किस स्थिति में दिशा बदली जाएगी। यह पारदर्शिता अवास्तविक वादों से बचाती है तथा विश्वास पैदा करती है। पुस्तक का व्यावहारिक सबक है कि व्यवसाय की भाषा बोलना तकनीकी गहराई छोड़ना नहीं, बल्कि उसे निर्णय योग्य परिणामों में अनुवाद करना है। निष्कर्ष में टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी पैटर्न्स उन आर्किटेक्टों, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी प्रबंधकों, उत्पाद नेताओं तथा कार्यकारी अधिकारियों के लिए सबसे उपयोगी है जिन्हें तकनीकी दिशा को निवेश और व्यावसायिक परिणामों से जोड़ना पड़ता है। यह उन पाठकों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है जो जानते हैं कि उनकी प्रणाली या प्लेटफॉर्म में सुधार चाहिए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कर पाते कि किन सुधारों को पहले किया जाए, उनका मूल्य कैसे बताया जाए या नेतृत्व से स्वीकृति कैसे ली जाए। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ तैयार नुस्खे देना नहीं, बल्कि निर्णयों को व्यवस्थित करने के लिए दोहराने योग्य पैटर्न देना है। पाठक संदर्भ विश्लेषण, प्राथमिकता, अनुमान, तकनीक चयन, विक्रेता मूल्यांकन और संप्रेषण के लिए उपयोगी प्रारूपों का संग्रह पा सकते हैं। इससे रणनीति दस्तावेज अधिक स्पष्ट, परीक्षण योग्य और क्रियान्वयन से जुड़ा बन सकता है। समान श्रेणी की कई पुस्तकें या तो शुद्ध एंटरप्राइज आर्किटेक्चर पर केंद्रित रहती हैं या व्यापक व्यवसाय रणनीति के सिद्धांतों तक सीमित रहती हैं। ह्यूइट की पुस्तक इन दोनों के बीच का पुल बनाती है। वह आर्किटेक्चर के तकनीकी निर्णयों को बाजार, संगठन, संस्कृति, लागत और नेतृत्व संवाद के साथ रखती है। इसकी सीमा भी यही है कि पैटर्नों को संस्थागत संदर्भ के अनुसार विवेक से ढालना होगा। फिर भी जो लोग तकनीकी प्रस्तावों को व्यवसाय की भाषा और ठोस निर्णय ढांचे में बदलना चाहते हैं, उनके लिए यह एक उपयोगी कार्यपुस्तिका और संदर्भ ग्रंथ है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं एवन हैविट, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।